Okay, ha. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم
ولا اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم شاست حسین باد شاست حسین دینست حسین دین پناست حسین سردار ندا دست دردست یزید حقا کے بنا لا لاست حسین صلوات پڑھے محمد
اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم
عزادارانِ امام خیصر باغ بامبے تھرڈ مجلس 1443 ہجری 2021 کی جو خواجہ اجمیری کی یہ رباعی پر ہو رہی صرف ایک موٹیویشن کے لیے کہ محرم کا پیغام کیا ہے ہمارے یوتھ کو یہ فکر ہونا ان کی تھنکنگ بدلنا ان کی سوچ بدلنا کہ محرم شروع ہو گیا and what we have to do in Muharram. صرف مجلسیں کرنا کافی ہے, ایک دو تین چار مجلسیں کر رہے وہی کافی ہے, یا اپنے آپ کو پریپیئر کرنا ہے امام حسین کے لیے. ہر لڑکا لڑکی کو بول رہا ہوں, بڑوں کو نہیں بول رہا, کہ خواجہ اجمیری کی یہ رباعی اتنی مشہور ہوئی, کل میں نے بتایا تھا, اتنی فیمس ہو گئی کہ صدیوں سے سینچریز گزر گئے, ہر مذہب و ملت کا آدمی, ہر اردو سپیکنگ بولنے والا, سب کانٹیننٹ کا, سب جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے. لاکھوں کی تعداد میں ان کی جب برسی ہوتی ہے تو پورے سب کانٹیننٹ سے, آپ سمجھ رہے, سب کانٹیننٹ میں نام نہیں لینا چاہ رہا کنٹریز کے, وہاں سے لوگ آتے ہیں ان کے مزار کیوں, وہ لوگ جو آتے ہیں آئے, جو بھی وہ لوگ کرتے ہیں چلے جاتے واپس. لیکن امام کے چاہنے والوں کے لیے خواجہ اجمیری از اے ڈفرنٹ پرسن. اس لیے ڈفرینٹ ہے کہ وہ ہمارے ہیں. جتنے میں کلیئر کر دوں اسٹارٹنگ میں, جتنے یہ اولیاء اللہ ہے, خواجہ اجمیری ہے, انڈیا میں گلبرگے میں ہے, گیسو دراز ہے, دہلی میں نظام الدین اولیاء ہے, اور حیدرآباد میں یوسفین ہے, کراچی کا میں نے پہلی مجلس یا دوسری مجلس میں نام لیا تھا, شاہ عبداللہ غازی, یہ سارے یہ لوگ جو ہے آج کے نہیں, 100-200 سال 300 سال 400 سال, کراچی والے تو 1400-1300 سال یا 1200 سال پرانے. یہ لوگ اس زمانے میں آ کے ان کو فکر تھی کہ شیعت کو پھیلائیں, ان کو فکر تھی کہ مولا حسین کے پیغام کو دنیا تک پہنچائیں. اس زمانے میں یہاں شیعت نہیں تھی, جیسے آج لاکھوں کی تعداد میں ماشاءاللہ انڈیا میں شیعہ ہے, اس زمانے میں اتنے شیعہ نہیں تھے. اور بولنا بھول گیا کہ آگرہ میں سید نور اللہ شوستری, سید نور اللہ شوستری نے مغل ڈائنیسٹی میں, کہ جس ڈائنیسٹی میں, جو ہسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں کہ مغل ڈائنیسٹی کیا تھی, اتنے جابر بادشاہ تھے, کنگز تھے وہ, पूरा नॉर्थ इंडिया, उस वक्त का नॉर्थ इंडिया, आज जो नॉर्थ इंडिया है प्लस पाकिस्तान का लाहौर, पाकिस्तान का पूरा पंजाब का बेल्ट जो है, ये पूरा बेल्ट जो इतना बड़ा, उस जमाने में पार्टीशन तो नहीं था, ये एक ही कंट्री थी। पूरी इस एरिया में एक जगह अलियन वली अल्लाह बोलने वाला नहीं था, ओपन नहीं बोल सकते थे। अगर कोई बोलता उसको पकड़ते मार देते, बिल्कुल बनी उमैया की हुकूमत थी मुगल डायनेस्टी की, कोई चाहने वाले नहीं थे मौला के। अकबर को ले ले, जहांगीर को ले ले, शाहजहां को ले ले, बाबर को ले ले, हुमायूं को ले, हुमायूं थोड़ा सा सॉफ्ट था, इसलिए सॉफ्ट था कि उसको ईरान ने सपोर्ट करके उसको वापस लेकर आए थे हुकूमत के लिए, तो कंडीशन रखी गई थी कि तुम शियों की मदद करना। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अपना इंटरेस्ट देख रहे, कभी अपना इंटरेस्ट नहीं देखो कि शिया के लिए तुम क्या कर सकते। ये मेरी स्पीचेस सिर्फ एक अवेयरनेस के लिए कि जो हम गफलत में बैठे हुए हैं ना, अरे मैं तो बड़ा मौलाई हूँ, मैं तो बड़ा शिया हूँ। कभी भी याद रखो, प्लीज गौर से सुनना, खैसरबाग के मेंबर से बोल रहा कि ये जहन में रखो ही मत कि पूरे बॉम्बे का सबसे बड़ा शिया या सबसे बड़ा नेक आदमी मैं, 24/7 तुम्हारी फिक्र होना। क्यों? इसलिए कि शैतान रिटायर्ड नहीं हुआ अभी, शैतान तुमको करता रहेगा। हमारे पास क्या है, बड़ी मैं नमाज पढ़ रहा, रोजा रख रहा, डोनेशन दे रहा, फाइन, आई एम फाइन। पता नहीं एक चीज भी अल्लाह की बारगाह में कबूल हुई या नहीं। उसके लिए हमेशा ये दुआ करना, मैंने कल शायद बोला था या नहीं बोला था, अगर बोला था तो फिर रिमाइंड करो कि ये दुआ करो, शायद मैंने बोला था, ये दुआ करो कि अल्लाह मुझे चांस दे, मौका दे कि मैं कुछ करूं, मैं किसी के लिए काम आ जाऊं। ये करबला का पैगाम है, मौला हुसैन का पैगाम यही, इमाम अली का पैगाम यही कि हम किसी इंसान के लिए, इमाम हुसैन को आप बोलते हैं कि ही इज अ सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी, खाली बोल के खुश हो रहे कि मौला ने इंसानियत को बचा लिया, हम कितने इंसान को बचाए। देखिए मरते हुए इंसान को मौत दो वजह की है, एक रियल जो मौत रूह निकलती वो एक मौत है, एक मौत वो है कि अगर तुम इस्लाम से दूर हो गए वो भी तुम्हारी मौत है, रिलीजन से दूर हो गए, अकीदे से दूर हो गए वो भी तुम्हारी मौत है। ये अल्लाह के रसूल का जुमला, आबिद बिरामी का जुमला नहीं है, ये अल्लाह के रसूल ने कहा, सरकार ने कहा, सरकार ने यह कहा कि बच्चे है खेल रहे थे मदीने मुनव्वरा में, अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे, बोला खेल बच्चे खेल रहे, जैसा बच्चे खेलते हैं, छोटे बच्चे खेल रहे थे। प्लीज गौर से सुनना, अल्लाह का रसूल असाब के साथ जा रहा था, छोटा सा छोटी सिटी है मदीने मुनव्वरा, उस सिटी में बच्चे एक जैसा खेलते हैं घरों के सामने खेल रहे थे, सरकार जाते जाते रुके, रुक के एक बच्चे को गोद में उठाया, अल्लाह का रसूल ने गोद में उठाया, प्लीज गौर से सुने, गोद में उठाया, गोद में उठा के रोने लगे। मुसलमानों ने कहा रोने की क्या बात है, ये तो ठीक है, इज ओके, रो क्यों रहे? तो कहा मैं एक जमाना देख रहा हूं, मैं एक पीरियड देख रहा हूं कि जिस जमाने में माँ बाप अपने बच्चों को कत्ल कर देंगे, लोग जितने थे वो सब युद्ध पर शौक, कहने लगे यार रसूल अल्लाह माँ बाप अपने बच्चों को कत्ल करेंगे? तो कहा हाँ, माँ बाप बच्चों को कत्ल करेंगे। तो कहा वो मुसलमान माँ बाप होंगे? तो कहा हाँ, मुसलमान माँ बाप, मेरा कलमा पढ़े। उसके बाद अल्लाह के रसूल ने कहा देखो कत्ल सिर्फ तलवार से नहीं होता, माँ बाप को फिक्र ही नहीं होगी दीन की, बच्चा दीन से निकल जाएगा, इस्लाम से निकल जाएगा, माँ बाप रिलैक्स होकर बैठे। आप इंसाफ से बोलो, आज कितने माँ बाप को फिक्र है, हमको कितनी फिक्र है कि मेरा बच्चा दीनदार हो? सबके तीन तीन चार चार बच्चे या दो बच्चे या एक बेटा है किसी का। मैं इंसाफ से बोलो, दिल पे हाथ रख के बोलो, घर को जाके बिस्तर पे सोच के बोलो कि आबिद बुरामी ने क्या कहा। कोई माँ को कोई बाप को यह एहसास है या ये दुआ कभी करते अपनी नमाजों में कि मौला मेरा एक बेटा है, मैं चाहती इस बच्चे को आपके लश्कर का सिपाही बनो? जोहर की दुआ तो कर रहे, खाली वह अज्जल फरजों बोल रहे कि मौला आप जल्दी आइए, मैंने कोई आर्मी तैयार की है, मैंने कोई फौज तैयार की है, मैंने इमाम के लश्कर के लिए सिपाही तैयार किया है। अल्लाह ने तुमको इतनी बड़ी नेमत औलाद की दी, ये अल्लाह की जुमले मेरे गौर से सुन, अल्लाह की ये अमानत है जो हमारे पास है। अमानत समझते हैं, औलाद जो होती अल्लाह की अमानत होती, डे ऑफ जजमेंट में अल्लाह उन माँ बाप से पूछेगा जिनकी औलाद गुमराह हो गई, जिनकी औलाद दीन पे नहीं है, जिनकी औलाद गैर मजहब में चली गई, तो उन माँ बाप से पूछेगा अल्लाह कि मेरी अमानत के साथ तुमने क्या किया। आप इंसाफ से बोलो जो मैं बोला। हम दुआ करते हैं, क्या मेरे दिल में ख्वाहिश है कि यार मौला मैं अपने बेटे को आपके लश्कर में मरूं, मैं ऐसा तैयार करूंगा कि मेरा मेरी औलाद आपके लश्कर में सिपाही। दोस्तों ये बख्शिश का सहारा है। हियर एंड हियर आफ्टर, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से, हियर एंड हियर आफ्टर, अगर तुम्हारा बेटा दीनदार नहीं, एक एक जुमले का जिम्मेदार व्हाट आई एम सेइंग, अगर तुम्हारा बेटा दीनदार निकल जाए तो वो तुम्हारा बेटा तुम्हारे मां बाप को 7 जनरेशन ऊपर और 7 जनरेशन नीचे बख्शवा देगा। आप क्या समझ रहे हैं यार? मैं छोटी सी मिसाल दूं, आराम बाग सब जाते हैं, जाना भी चाहिए, हम आराम बाग जाते हैं, अपने बाप को दफन करते हैं, वापस आ जाते हैं, कभी नेक्स्ट डे जाके अपनी बाप की ग्रेव पे बैठ के पूछते हैं कि हाउ आर यू, कैसे आप पूछते हैं? माँ को दफन किया, कभी जाके नेक्स्ट डे पूछते कि माँ तू कैसी है, नीचे दफन कर दिया, थैंक यू वेरी मच, वापस आ गए। वहां की लाइफ वहां के लोगों से पूछो, ये बॉम्बे की जो लाइफ है ना वो रियल लाइफ आरामबाग की है, रियल लाइफ खसर वहां की रहमताबाद की, ये एक टेम्पररी लाइफ है हमारी, बांद्रा में हो, जुहू में हो, डोंगरी में हो, जहां जहां हो आम रहते, ये तो हमारी टेम्पररी लाइफ है, असली लाइफ तो आरामबाग और अहमदाबाद की है, जहां से। और आपको मालूम वो जिंदगी जो शुरू होगी, गौर से सुनो यार, वो लाइफ जो शुरू होगी सारे कंफर्ट्स के साथ शुरू नहीं होगी, जैसे हम यहां रहते एयर कंडीशन है, लाइट है, अंधेरे में कोई रहता है बॉम्बे में? हमारी आदत क्या है कि लाइट पर रहना। अगर मैं नया बंगला बनाऊं, नया फ्लैट लूं, सबसे पहले अगर वहां करंट नहीं है तो कोई जाके रहेगा? मैं पूछ रहा आपसे, अगर घर में करंट नहीं है, आपने नया अपार्टमेंट लिया और बोलेगा वो के भाई आप ले लो, अपार्टमेंट तो फर्निश है ले लो, लेकिन इसमें करंट नहीं है, आप जाएंगे वहां पे? आप बोलेंगे नो, पहले करंट लगाओ, इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम करो, लाइट लगाओ। हमको वो आदत है, हमारी आदत वो है कि हम लाइट में रहने वाले, रोशनी में रहने वाले। कभी सोचा ये बात? डिड यू रियलाइज व्हाट आई सेड? हमारी जिंदगी वहां कैसे शुरू होने वाली? वहां कोई नीचे लाइट है? फिक्र कर रहे मैं क्या बोल रहा? नीचे कोई बल्ब है? नीचे एयर कंडीशन है? सबके लिए, हर आदमी, कई 100 मरतबा आप आराम बाग गए होंगे लोगों के फ्यूनल्स में, कई मरतबा गए होंगे फ्यूनल में, अपनी आंखों से देखा आराम बाग के अंदर। मैं आराम बाग इसलिए बोल रहा कि मैं खैसर बाग की मजलिस पढ़ पढ़े मोहम्मद प्लीज, मेरी तरह मुतवज्जे रहे, प्लीज मेरी तरह मुतवज्जे रहे। आरामबाग इसीलिए बोल रहा कि हम फेमिलियर है आरामबाग से। आप इंसाफ से बोलो कितनी मरतबा गए आप लोग? गए आराम से, बॉडी को छोड़ा, वापस आ गए आराम से, देख के आ रहे। इसीलिए हमेशा बोलते हैं कि एक आदमी मरता है 200 आदमी को लेके जा रहा साथ। क्यों लेके जा रहा? ये सिर्फ बताने लेके जा रहा, देखो मैं इतने बड़े बंगले में बॉम्बे में रहता था, देखो मेरी जिंदगी कहां से स्टार्ट हो रही, अंधेरे से। कभी खौफ आया, डर आया? आज की रात जब बिस्तर पे जाना, बॉम्बे में अपना नरम तकिए के ऊपर सर रखना, तो सोचना 5 मिनट के आबिद बिग्रामी ने क्या कहा। ये फैक्ट नहीं है, कोई गारंटी है? लास्ट ईयर कितने थे वायरस, कितने जल्दी जल्दी आके बड़े बड़े लोगों को लेके चला गया, हमको भी ले जा सकता। लेकिन अगर हम रियलाइज नहीं करेंगे, अगर काम नहीं करोगे इमाम हुसैन के लिए, तो नीचे अंधेरा में रहोगे, सिर्फ अंधेरा रहेगा। आज ख्वाजा अजमेरी के पास अंधेरा नहीं है, आज नूरुल्लाह शुस्त्री, मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं, नूरुल्लाह शुस्त्री के पास आज अंधेरा नहीं है। आज जितने बड़े ये लोग जिन्होंने इमाम हुसैन के लिए काम किया, आप सोचो यार मैं क्या बोल रहा, कि 1000 साल, 1000 ईयर्स गिनने बैठे तो टाइम लग जाए आपको। 1000 ईयर पहले दुनिया क्या थी? कुछ नहीं था दुनिया में। कितनी डिफिकल्ट लाइफ थी उस जमाने में। उस जमाने में काम करके वो बंदे ऐसा जिंदा रहे जब उनका नाम बाकी है, वरना तो नाम मिट जाना था 1000 साल पहले मरा। ना कोई प्रिंटिंग प्रेस है, ना कोई मीडिया है, ना कोई किताबें हैं, ना बॉल पेन है, ना कंप्यूटर है, कुछ नहीं है। मिट जाना चाहिए था, लेकिन नाम बाकी किसने रखा? किसने बाकी रखा? हुसैन इब्न अली ने बाकी रखा। इफ यू वर्क फॉर इमाम, इफ यू वर्क फॉर इमाम, यू आर ऑलवेज देयर। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मुझे अफसोस होता है जब मैं दुनिया में जाता हूं, लोगों से मिलता हूं, लोगों के पास बैठता हूं, कितने रिलैक्स है हम, कितने रिलैक्स। मुहर्रम आ गया, एक मजलिस कर ली, थैंक यू, मजलिस तो हो गई ना। चेंज आना लाइफ में, फिक्र को बदलना। सोचो आज की रात मैं क्या करूं इमाम के लिए, क्या करूं। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देने वाला हूं कि कभी आप सोच भी नहीं सकते। बिहार, इंडिया का स्टेट है बिहार, जानते हैं ना। इतने डर के क्यों बैठे हैं यार? देखिए, मैं कोई बम्बार्डमेंट नहीं कर रहा हूं, वरना अगर मैं लाइफ आफ्टर डेथ पढ़ू, फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव पढ़ो, बरज़ख पढ़ो, जितने हैं वो भी नहीं रहेंगे। नहीं, एनीहाउ, बिहार कैसा स्टेट है? बहुत अच्छा स्टेट है। मेरी मजलिस लाइव जारी, आई डोंट वॉन्ट टू कमेंट एनीथिंग, इसलिए कि मैं जाता हूँ पढ़ने। बहुत अच्छा सिटी है, ब्यूटीफुल सिटी है, वेरी ओल्ड सिटी, हिस्ट्री से भरी हुई है, हिस्ट्री से भरी हुई है। इतनी पुरानी इंडिया की सिटी है, लोग अच्छे हैं वहाँ के, वहाँ का खाना अच्छा है। मैं आपको रिलैक्स करने बातें कर रही है। बिहारी कबाब वेरी टेस्टी, खाया है कभी? नहीं, बॉम्बे में पता नहीं मिलते नहीं मिलते। देखिए, मैं बड़ा नोटी मौलाना, सब आप लोग जानते हैं, था बेहतरीन खाना बिहार का। मैं बिहार पटना भी गया, अब बिहार के हर रिमोट एरियाज में जाके पढ़ा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मौला हुसैन का सदका है। अभी लास्ट ईयर बिहार में एक जगह है चंदन पट्टी, मैंने खुद पहली दफ़ा नाम सुना। मैं पटना में पढ़ रहा था तो एक डॉक्टर ने रिक्वेस्ट किया कि मौलाना आपकी फ्लाइट शाम में है कल, और आप प्लीज़ ये मजलिस पढ़ दें। मैंने कहा कहाँ जाके पढ़ना? तो कहा चंदन पट्टी में पढ़ना, प्लीज़। बहुत रिक्वेस्ट करने लगे वहाँ के लोग कि आप आए हैं तो प्लीज़ हमारे पास आओ। ऐसे लोग, उन्होंने कहा 3 घंटे की ड्राइव है। ऐसे लोग, नो प्रॉब्लम, मैं जा रहा था चंदन पट्टी, नाम याद रखो। जब जा रहा था तो मैंने रास्ते में जो मुझे लेके जा रहे थे होस्ट, उन लोगों से पूछा कि बाबा ये क्या शहर है? इन्होंने कहा मौलाना ये शहर बड़ा तारीखी शहर है, हिस्ट्री से भरा हुआ। यहाँ पे एक ऐसा शख्स पैदा हुआ था 18th century में, 100 साल पहले, 100 साल प्लस बिहार, यू कैन इमेजिन। चलो बड़ी सिटी बॉम्बे में 18th century में कोई आया, दिल्ली में कोई आया, लखनऊ में कोई आया, हैदराबाद में क्यों आए, वहाँ पे एक पूरी डायनेस्टी थी। हैदराबाद में कुतुब शाही डायनेस्टी, निज़ाम की डायनेस्टी, यहाँ अवध लोग थे लखनऊ में, बड़े शहरों की बात। और बिहार, वो भी चंदन पट्टी एक अंदर इंटीरियर 200 किलोमीटर अंदर। मैंने कहा यहाँ कौन है? तो बोला 18th century में एक 18 साल का लड़का, 18, नाम बाद में बोलूंगा, पहले से नाम बोल दूंगा तो आप एक्साइटेड हो जाएंगे, मैं भी स्मार्ट हूँ, इतनी जल्दी नहीं बोलूंगा ना। 18th century में एक 18 years old बॉय मुसलमानों के साथ बैठा हुआ था, अब फ्रेंड्स के साथ बैठा। उन लोगों ने कहा कि राबजी शिया लोगों में कोई हाफिज नहीं होता कुरान का, कोई हाफिज वाफिज नहीं होता, हमारे पास हाफिज है। सुन लिया, घर जाके इस बंदे ने हिफ्ज किया कुरान को 4 साल में, पीछे से शुरू किया। वो डिफिकल्ट है हाँ, अलहम से, अलिफ लाम मीम से शुरू नहीं किया, कुरान के पीछे से शुरू किया, लास्ट पेज से शुरू करके पूरा याद करते 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 अलिफ 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 लाम मीम तक सूरह बकरा तक आया, अलहम तो सबको पता है। उसके बाद उसने 4 साल के बाद 22 साल की एज में उसने इन मुसलमानों को कहा, तुम बोल रहे कि शियों में कोई हाफिज नहीं है, मैं हाफिज बन गया। देखो शौक, हाफिज बन गए। अब इसने पढ़ना शुरू किया, उनके पास थोड़े से लोग थे, ये एक लड़का सब पे भारी आ गया। इस अंदाज से इसने पढ़ा करो, हिफ्स किया, हिफ्स करके उसने पहली कुरान की तफसीर, कितनी आप आराम से सुन रहे हैं यार, पहली कुरान की तफसीर उर्दू की, हाजी नाजी बात के, उन्होंने गुजराती में किया, बड़े आदमी है वो, मैं बहुत बड़ा फैन हूं उनका, लेकिन इस बंदे ने उर्दू की पहली तफसीर कुरान की लिखी। उस जमाने मुझे लखनऊ में मैंने ये बात कही थी तो उन लोगों ने कहा कि शायद गुफरम आप, वो भी उन्होंने भी किया होगा, जो जितने लोगों ने किया होगा अल्लाह सबको अच्छा रखे, मकसद वो नहीं है, मकसद ये है कि उसने किया। आप सोचो 18th century में इस बंदे ने ऐसा काम किया, ना उस जमाने में जैसे मैं बार बार बोलता हूँ ना लाइट है, ना कंप्यूटर है, ना बॉल पेन है, बॉल पेन नहीं है, बॉल पेन आप लेते 100 pages एक साथ लिख के फेंकते, आप जब से बॉल पेन आया ये हो गया, जैसे जब से वो इंक खत्म हुआ और बॉल पेन आया 100 pages आप लिख सकते एक साथ। पहले क्या था, इंक डालते थे पेन, उससे पहले क्या था, बॉल के अंदर इंक होती थी, वुडन पेन होता था, डिप करते ऐसा डिप किया, मिसाल के तौर पर अलिफ लिखा, ये इंक ड्राई हो गई, फिर डिप किया, फिर बे लिखा, मिसाल दे रहा, इस तरह लिखा जाता था। तो कितना डिफिकल्ट था उस जमाने में, कितना डिफिकल्ट उस जमाने में, इस बंदे ने पूरे 6,500 आयतों का 114 सूरों की तफसील लिखी, और उस जमाने में कोई कंप्यूटर नहीं, खलमी कुरान लिख के 18th century की बात कर, आज मैं पूरी दुनिया बोल रहा हूं, मैं वैनकोवर से, ये अल्लाह का शुक्र, शुक्र है अल्लाह का, ये सारे एरियाज में मैं गया हुआ हूं, वैनकोवर से लेके पूरा अमेरिका, पूरा कनाडा, पूरा सब कॉन्टिनेंट, पूरा ऑस्ट्रेलिया, पूरा अफ्रीका, इस बंदे के मिलियंस की तादाद में, मिलियंस की तादाद में 100 साल हो गए मर के, मिलियंस की तादाद में कुरान हर घर में। इसका नाम क्या था, हाजी फरमान अली, उर्दू का सबसे मशहूर कुरान हाजी फरमान अली। उसके बाद मकबूल अहमद का कुरान आया, उसके बाद अब तो कई तफसीर आ गई, जीशान है तो जवादी मरहूम ने भी लिखा, तफसीर नमूना भी हमारे पास है। तो इस बंदे की ग्रेव कहाँ है, मुजफ्फरपुर बॉम्बे बिहार में जगह है मुजफ्फरपुर। जब मैं पढ़ने गया तो मैंने खास तौर पे बोला आई हैव टू गो टू हिज ग्रेव, मुझे जाना, मुझे लेके चलो आप लोग। मजलिस थी तो अर्ली मॉर्निंग हम लोग फरमान अली की ग्रेव पे गए, मुझे यकीन नहीं आ जाके कि मैं फरमान अली के सामने खड़ा हुआ। काम 18th century में काम किया, आज तक मिलियंस में बोलो ना, मिलियंस की तादाद में कुरान मौजूद है। तो मैंने कहा कि उसकी मजलिस में, उसमें मुजफ्फरपुर की जब मजलिस पढ़ा, मैंने कहा यार तुम लोगों के लिए तो एक आइडियल है, यहाँ के यूथ के लिए आइडियल फरमान अली है, जैसा फरमान अली ने काम किया वैसे तुम भी करो कोई काम, किसी को तो आइडियल बनाओ। आज फरमान अली, उस जमाने के जितने बड़े बड़े उलमा थे सब मर गए, जितने पैसे वाले थे सब मिट गए, हड्डियां गल गई, कोई बाकी नहीं है, लेकिन आज फरमान अली का नाम बाकी पूरी दुनिया में है। अगर खाली कुरान उठा के तुम देख रहे तो फरमान अली को सवाब मिल रहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहे तो उसको सवाब मिल रहा, अलिफ लाम मीम बोल रहे तो उसको सवाब मिल रहा, अलम का सूरह पढ़ रहे तो उसको सवाब मिल रहा। आप सोचो कि उस बंदे का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन, और अल्लाह ने नाम को कैसे बाकी रखा। जब तुम इमाम के लिए काम करोगे तो यह हश्र होगा, समझ में आई बात, खाली बैठ कर दम बन कैसे मत बैठ। ये मुहर्रम चेंज का नाम है, मुहर्रम में लाइफ चेंज होना, थिंकिंग चेंज होना, दुआ करना फर्शेदा पे बैठ के कि बोला गिव मी चांस, आई शुड डू समथिंग। अगर ये नहीं करोगे ना, कोई चीज बाकी नहीं, तुम्हारा नाम ही नहीं रहेगा। इमाम अली ऐसे लोगों के लिए क्या बोलते, जैसे हम लोग हैं, मैं अपने आप को भी बोल, हम लोगों के लिए मौला अली का जुमला है, टेलीफोन्स को रख दे, खाली मजलिस सुने, 12 बजे एक बार टेलीफोन्स खोल लेना, सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले, मौला अली अलैहिस्सलाम ऐसे लोगों को क्या बोलते, मौला ने कहा, मौला का जुमला, इमाम अली का जुमला, उनके सरमन का जुमला, मौला अली बोल रहे कि जब ऐसे लोग जो नॉर्मल जो अपने बारे में सोचते रहते हैं, अपने कारोबार में सोच रहे, जॉब पे सोच रहे, सोचना बहुत अच्छी बात है, मना नहीं कर रहा, जरूर सोचो, फैमिली को चलाना है, घर बार चलाना, ये भी इबादत है। लेकिन खाली फिक्र कर तुमको दुनिया की रही, बोले ऐसे लोगों का जब आखिरी वक्त आएगा ना, आखिरी वक्त, इमाम का जुमला मेरा जुमला बोले, जब उसके सामने उसका अमलनामा आएगा, मलकुल मौत जब आएगा ना सबके लिए, हमारे सामने एक हमारा पूरी जिंदगी के अमलनामा आ जाता है, कितने गुड डीड्स है और कितने बैड डीड्स है, कितनी नेकियां हैं कितने गुनाह हैं, एक फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आता अमलनामा। इमाम अली बोलते मेरा मौला बोलता कि उस वक्त इंसान अपनी जबान को अपने दांतों से ऐसा काटता है, अपने गुड डीड्स को देख रहा, बैड डीड्स को देख रहा कि गुड डीड्स कम है बैड डीड्स ज्यादा है, काट के इमाम अली बोलते कि वो उस वक्त भीख मांगता, बोलता कि यार व्हाट आई हैव डन इन माय लाइफ, अल्लाह हैज गिवन अस सो मच, मैंने क्या किया जिंदगी में, व्हाट आई हैव डन इन माय लाइफ, सिर्फ अपने लिए जिंदा रहा। इस्लाम एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं, कज़रबाग के मिंबर से बोल रहा, इस्लाम उसको एक्सेप्ट नहीं करता जो सिर्फ अपने बारे में सोचता, इतनी बड़ी बात बोला इस मिंबर से, पूरी दुनिया सुन रही, कज़रबाग का मिंबर, जो अपने बारे में सिर्फ तुम सोचते रहोगे इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता इस्लाम। इस्लाम का यह मसला ही नहीं कि तुम अपने आप को सोचो, तुम दूसरों के बारे में सोचो। अगर 10 चीज तुम अपने बारे में सोच रहे, एक चीज तो अपने किसी मोमिन भाई के बारे में सोचो, कोई एक चीज तो इमाम हुसैन के बारे में सोचो कि इतना बड़ा सैक्रिफाइस हो गया, हमने क्या क्या मना लिया। कभी सोचा कि आज 3 दिन मुहर्रम के गुजर गए, 4 की रात आ गई, कोई लाइफ में थोड़ा चेंज आया, चेंज मतलब फिक्र बदलना, जिस दिन तुम्हारी फिक्र बदलेगी ना तुम काम करने लगो। और एक बात बहुत अच्छी बोलता, प्लीज गौर से सुनो सब, अगर तुम इमाम के लिए सोचोगे ना तो इमाम तुम्हारे लिए सोचेगा। आप नहीं चाहते कि आपके लिए इमाम सोचे, आप नहीं चाहते कि हम इमाम के लिए कोई काम कर सके। मैंने ये एग्जांपल्स क्यों दिए इन लोगों के, ये एग्जांपल्स मैंने सिर्फ इसलिए दिए कि हमारे यूथ में एक मोटिवेशन होना, हमारे यूथ में एक फिक्र पैदा होना। देखिए और मैं एग्जांपल्स दूं कि जिनकी वजह, जैसा रहबर है इनकलाब आगा खुमैनी साहब, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, तवज्जो से सुनो, आगा खुमैनी का पीरियड कौन सा है, 70s का है। उनकी डेथ कब हुई, 89 में हुई, 89 में उनकी डेथ हुई, सब आप लोग जानते हैं आगा खुमैनी को, अल्लाह उनके दर्जात को बहुत बुलंद करे। आप इंसाफ से बोलो कि आगा खुमैनी ने जब रिवोल्यूशन का बुनियाद डाली, स्टार्ट किया, वो कौन सा पीरियड था, 60s में स्टार्ट किया था, 60s में उन्होंने इनकलाब स्टार्ट किया, और एंड कब हुआ, 79 में वो वापस ईरान आए। 30 years स्ट्रगल किया उन्होंने, 30 years बहुत बड़ा पीरियड होता है, एक लड़का जवान हो जाता है, एक जनरेशन तैयार हो जाता है, 30 years he was so dedicated, इस्लाम डेडिकेशन मांगता, इवन अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, अगर आपके पास डेडिकेशन नहीं है तो आपका बॉस आपको नहीं रखेगा ऑफिस में, बोलेगा गेट आउट फ्रॉम हियर, मुझे नहीं चाहिए तुम। कौन से स्टाफ को रखता जो डेडिकेटेड रहता, डे टू डे लाइफ में भी हमको डेडिकेशन चाहिए, वही आदमी तरक्की करता, वही आदमी ग्रो करता कि जिसके पास डेडिकेशन, कोई काम अगर डेडिकेशन नहीं है तो बॉसेस पसंद नहीं करते आप जॉब नहीं, इवन बिजनेस में अगर आपका डेडिकेशन नहीं है आपका बिजनेस चलेगा, आपको डेडिकेटेड होना पड़ता। लेकिन हम बिजनेस में हैं, अपने कारोबार में तो बहुत डेडिकेटेड है, इस्लाम के लिए नहीं। आगा खुमैनी का जो सबसे बड़ी बात थी, He was so dedicated towards Islam. हैरत होंगे आपको कि जब उन्होंने रिवोल्यूशन स्टार्ट किया था, बेदारी, जैसा मैं बेदारी के मजलिस पढ़ा ना कि ये करो ये करो ये करो, वी हैव टू डू दिस दिस दिस, इन्होंने, और उसके सामने कौन सी हुकूमत थी, गवर्नमेंट कौन सी थी उस वक्त, मिडिल ईस्ट का सबसे स्ट्रांग किंग था पूरा मिडिल, सऊदी वादी कुछ भी नहीं था, जब था सऊदी लेकिन सऊदी अरब का कोई वो नहीं था, जीता ईरान था। ईरान का जो शाह रजा शाह पहलवी जो किंग था वो इतना स्ट्रांग था, इतना स्ट्रांग था, आयरन रॉड की तरह वो हुकूमत करता था और पूरा मुल्क उसको चाहता था और पूरी दुनिया में उसकी हुकूमत थी। और अमेरिका का सबसे क्लोजेस्ट एली था वो, मिडिल ईस्ट में सिर्फ रजा शाह पहलवी ईरान था। ये जितने मिडिल ईस्ट के कंट्रीज थे ये पीनट्स थे उसके साथ, वेरी स्ट्रांग हर चीज में, पैसे में, आर्मी में, मेडिसिन में, हर चीज में वेरी स्ट्रांग कंट्री। लेकिन वो किंग जो था ना, किंग रजा शाह पहले, वो पहले मजहबी था, शिया था, लेकिन वो हट गया, टुवर्ड्स वेस्ट चला गया। ईरान पेरिस बना हुआ था, तेहरान, वहां पे बार्स में यूथ को बोल ड्रिंक बियर, बियर को वो लोग बोलते थे बाली वाटर है, ओपन था बियर, बड़े बड़े बार्स थे, क्लब्स थे, पब्स थे, हर चीज थी, हर गुनाह वहां बैठ के कर सकते थे। जैसे हम दूसरे मुल्क ना लिटरली तेहरान को पेरिस बोलते थे, ये बोलते थे कि पेरिस में वो चीजें नहीं है जो ईरान में, इतने गुनाह होते थे, सिनेमा घर थे, बेपर्दी थी। उसी जमाने, प्लीज गौर से सुनो, उसी जमाने में इसने औरतों के सरों से चादरें ली थी, बोला था यहां पर्दा वर्दा नहीं करना, ईरान शिया मुल्क, पर्दा वर्दा नहीं करना, यहां इतना गुना ओपन हो रहे थे, हर गुना ओपन हो रहा था, वो डर ही नहीं था। और वहां के लोग बड़े मस्त थे, पैसा था, ये था। ऐसे मौके पर अगर कोई दीन की बात करे तो कैसा लगे, अब जैसा मैं कर रहा हूं और आप लोग बड़े रिलैक्स होकर बोले यार व्हाट इज टॉकिंग अबाउट, बोल रहे ना दिल में नहीं बोल रहे हैं तो अच्छा नहीं बोल रहे, तो इतने दिनों की आदत हो गई आपको। देखो एक बात बोलो, दीन के हर आदमी ये चाहता एक घंटा मजलिस में बैठो, हमारे लिए तारीफ करो, अच्छी बातें करो और चले जाओ। वो मजलिस में सवाब तो मिलेगा लेकिन मकसद मजलिस नहीं होगा, आप समझ रहे हैं मेरी बात। हर जाकिर चाहता कि उसकी मजलिस में बड़ी वाह वाह हो जाए, बड़ी नारे लग जाए और चला जाए। एक घंटे में आप लेके क्या जा रहे, बेहतरीन मजलिस वो होती कि जब तुम मजलिस हुसैन में आए ना तो एक बीमारी को छोड़ना, नूर की चीज को लेके बाहर जाना, मतलब यू हैव टू लर्न समथिंग, मुहर्रम लर्निंग का पीरियड, हमको कुछ इमाम हुसैन की कुर्बानी के लिए हमको कुछ करना, हम भी मोटिवेट होना। मैं आज के दौर में आप बोलेंगे क्या करना, बेहतरीन अमाल में सबसे पहले वाजिबात पे अमल करना। इफ यू रियली वॉन्ट टू ज्वाइन द आर्मी ऑफ इमाम मेहदी, इफ यू रियली वॉन्ट टू ज्वाइन करबला, पहली चीज जो है, पहला कंडीशन, वाजिबात पे अमल करना। अब पूरा वाजिबात का फ्रेम है आपको मालूम है, मैंने कुछ नहीं बताया, आई डोंट वांट टू से। लेकिन उसके बाद जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है आज के जमाने में, रिस्क हलाल खाना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है रिस्क हलाल खाना, एक रुपया भी इधर से उधर नहीं जाना। इमाम अली से पूछा गया कि मौला शिया की पहचान क्या है, मैं भी आगा खुमैनी का वाक़िया कंप्लीट करता, इमाम अली से पूछा गया था कि मौला आपकी शिया की आइडेंटिटी क्या है, का शिया ऑनेस्ट होता, ऑनेस्टी सिर्फ पैसों में नहीं होती, पूरी जिंदगी में ऑनेस्टी आना, जिंदगी का हर चीज में ऑनेस्टी, ईमानदार। उसके बाद इमाम अली क्या बोले मालूम, सोच नहीं सकते आप, इमाम अली शिया को पहचानना है तो जरा लेन देन करके देखो, क्या बोल रहा है, बॉम्बे में किसी को एक 1,000,000 rupees दे और बोले बेटा कीप इट विद यू, आई विल टेक इट टुमारो, विल से कि टुमारो नेवर कम्स, इज इट, देखे तो देखो, ये चीज पैदा करो। तुम्हारी आज तुम लोग स्कूल जा रहे, तुम कॉलेजेस जा रहे, तुम यूनिस को जा रहे, तुम मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर रहे, तो तुम्हारा कैरेक्टर ऐसा होना, तुम्हारी ऑनेस्टी ऐसा होना कि दूसरे रिलीजन वाले पूछना कि तुम कितने ऑनेस्ट है, कितने सॉफ्ट स्पोकन, तुम किस रिलीजन को बिलोंग करते, तो तुम बोलो मैं फॉलोअर ऑफ इमाम अली, ये शिया की पहचान। खाली काले कपड़े पहनने से शिया नहीं बनते, काले कपड़ा जरूर पहनो, मुहर्रम है जरूर पहनो, बट आई एम टेलिंग यू। तो अगर अब देखो नाम कैसा बाकी में, नाम ये तो अभी ये मजालिस में सिर्फ लोगों के कंट्रीब्यूशन बता रहा आपको, अभी तो चार पांच मजलिसें और हैं ना। आगा खुमैनी, 60s में इनको जब ये देखा कि ऐसे गुनाह हर तरफ हो रहे, उन्होंने रिवोल्यूशन स्टार्ट किया, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोला, किंग के अगेंस्ट में बोला। लोगों ने कहा किंग के अगेंस्ट में होता गला कट जाएगा। इनको रातों रात में से निकाला गया। गवर्नमेंट ने ऐसा प्रेशर किया, शाह ने कहा कि आई डोंट वॉन्ट टू सी हिम ओवर हियर, आई डोंट वॉन्ट टू सी हिम, आज ही रात में निकाल। इतना बड़ा आलिम निकाल दिया, तेहरान से उनका घर है, निकाल के ये इराक चले गए। उस वक्त सद्दाम नहीं था, लेकिन पार्टी यही थी, भाग पार्टी। ये ओवरनाइट वहां चले गए, इराक चले गए, वहां जाके इन्होंने बनाया। 30 years तक वहां रहे, 30 साल। इनका रिवोल्यूशन आया कैसा पता है आपको? मालूम है कुछ? इन्होंने ईरान तक अपने मैसेज को रिले कैसे किया? उस जमाने में व्हाट्सएप नहीं है, फेसबुक नहीं है, कैसा किया पता है आपको? ऑडियो कैसेट से। ये ऑडियो कैसेट का जमाना था, ऑडियो पे अपना लेक्चर करते थे। ये मैं जैसे बातें करा ना, ये करो तुम, ये करो तुम, ये करो, इमाम का ये हुक्म है, इमाम का, बिल्कुल जैसे मैं स्पीचेस दे रहा ऐसी। इस वजह की मैं उनसे बहुत इंप्रेस हूँ। और रहबर एक अजीम पर्सनैलिटी का नाम कि जिसने हजारों मील दूर बैठ के इतना बड़ा रिवोल्यूशन लाया, इतना बड़ा इनकलाब लाया कि पूरी हुकूमत हिल गई। ये बंदा वो है। तो वहां से बैठ के, इराक से बैठ के ऑडियो कैसेट भेजते थे, और ऑडियो कैसेट के थ्रू लोग जो सुनते थे उनको। 30 years कोई मामूली पीरियड नहीं है, 30 साल। आप सोचो, अपनी जिंदगी की पूरी जवानी आगाने इराक में गुजार दी, पूरी जवानी गुजार के इन्होंने वो काम किया कि ऐसी बड़ी जालिम हुकूमत को हिला दिया, उसकी हिला के शाह को मजबूर कर दिया कंट्री छोड़ने के लिए। रहबर का एक कंडीशन था, जब उनको बोले आप ईरान हो, उन्होंने कहा नो आई एम नॉट, आई डोंट वांट टू कम, जब तक शाह रहेगा वहां पे मैं नहीं आऊंगा। तो शाह को हुकूमत को, उस हुकूमत को खत्म करना पड़ा मजबूरी के तहत, इसलिए जो उस वक्त ईरान के इस शाह के जो सपोर्टर थे, ये सारे वेस्ट के बड़ी कंट्रीज, मैं नाम नहीं लेता किसी का, सारी बड़ी कंट्रीज उसको पूरी सपोर्ट कर रही थी, पूरी सपोर्ट कर रही थी। ये आगा ने कहा कि मैं निकलता ही नहीं यहां से। उसके बाद इराक के ऊपर उसको सपोर्ट दिया, सद्दाम के ऊपर प्रेशर किया कि इनको निकालो इराक से, तो सद्दाम ने उनको इराक से निकाला। निकाला तो ये वो बंदा है कि रात भर तुर्की के बॉर्डर पे रहे, सर्दी में रहकर पेरिस चले गए। बस पेरिस तक पहुंचा, मेरा टाइम हो गया। आप बोलेंगे प्लीज जल्दी खत्म करो, यही बोल रहे हैं ना, सलावत पढ़ लो मोहम्मद
मोहम्मद।
एक और पढ़ लें प्लीज, मैं इनकम्प्लीट मजलिस छोड़ के जा रहा आज, कल यही पेरिस से शुरू करूंगा। वेरी इंटरेस्टिंग वाकया आएंगे, लेकिन टाइम पे आए तो सुनेंगे। कल इंशाल्लाह ये रिवोल्यूशन के बारे में बताऊंगा। मैं सिर्फ एक, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोग को, मोटिवेशन के लिए मेरी जो मेरे सामने बैठे हुए हैं, सिर्फ उनके लिए नहीं पढ़ रहा। आप जानते हैं कि खजरबाग का अशरफ पूरी दुनिया सुन रही, ऑस्ट्रेलिया में भी सुने जा रहा, यूरोप में भी सुने जा रहा, अमेरिका कनाडा में सुने जा रहा, गल्फ में सुने जा रहा, इवन हमारे पड़ोस के मुल्क में सुने जा रहा, पूरी दुनिया सुन रही, हजारों की तादाद में जो मैसेजेस, जो पैगाम आ रहे। तो बस मैं मजलिस खत्म कर रहा, इसलिए मेरा टाइम होता है, जो टाइम है वो टाइम पर खत्म कर रहा। कल इंशाल्लाह सिर्फ मोटिवेशन के, मैं बार बार बोल कि अगर मैंने ये पूरे अश्रे में और पूरी दुनिया में जहां जहां सुने जा रहा खजरबाग का अश्रम, हजारों लाखों की तादाद में लोग सुन रहे, जहां भी सुने जा रहा पूरे अश्रे में, एक आदमी भी चेंज हो गया तो खजरबाग का अश्रम कामयाब हो गया। मुझे एक चेंज चाहिए। इसलिए कि दोस्तों, अगर चेंज हो गया तो जो मकसद हुसैन है वो पूरा हो जाएगा। एक चेंज नहीं हो रहा, जनरेशन बदलता। फिर बस मेरी ख्वाहिश है कि जो यहां बैठ के सुन रहे उनकी भी फिक्र को बदलो, मुझे बताओ, मुझे व्हाट्सएप करो कि यस वी आर थिंकिंग नाउ टू डू दिस। एक चीज याद रखो, घबराओ मत कि मेरे पास तो कोई टूल्स नहीं है। एक स्टेप तुम रखो, मंजिल तक इमाम पहुंचा देगा। स्टार्ट मैं ये बोलना चाहूँ कि 1443 हिजरा की मोहर्रम तुम्हारे लिए चेंज मोहर्रम आना, तुम्हारी फिक्र की चेंज है कि मेरे को कुछ मौला हुसैन के लिए करना है, माँ बाप के लिए को भी बोल रहा कि खाली दम बट के बच्चों को मत पालो, जिसके गोद में बच्चे रहे उन माँ उन औरतों को बोल रहा, बच्चे को गोद में लेके दुआ करो कि मौला इस बच्चे का वास्ता, मुझे आपके इस बच्चे को हुसैनी बनाना, इनकलाबी बनाना है, इमाम के लश्कर को शौइर, वही हमारी बखा है, बस अगर इसमें हम कामयाब हो गए तो हमेशा हमेशा हम जीत गए। बस दोस्तों मेरा मौला बड़ा गरीब है, गरीबों का गरीब इमाम है, हुसैन से बड़ा कोई गरीब नहीं, मौला हुसैन से बड़ा कोई मजलूम नहीं। 3 मुहर्रम गुजर गया, दिन गुजर गया, 4 की रात आ गई, शबे 4, कितने रातें और बाकी हैं, 5-6 रातें हैं। उसके बाद इतनी रौनक आप रोज देख रहे हैं, रोज एक मुकर्रर टाइम पे हम लोग सब जमा होते हैं, अब मजलिसें हो रही हैं। नेक्स्ट फ्राइडे ये टाइम क्या रहेगा पता है आपको? कयामत की रात रहेगी, आशूरा गुजर जाएगा, एक हफ्ता भी नहीं है। मेरा मौला हुसैन रुखसत हो जाएगा, घर सुनसान हो जाएगा, सन्नाटा आ जाएगा। बस जितने दिन आपको मिल रहे ना उसको गनीमत समझो, गनीमत समझो, और समझ कर बस सिर्फ दुआ ये करते रहो कि मौला गिव मी चांस, मौला गिव मी चांस, आई शुड सर्व यू मौला, आई शुड सर्व यू, यही मेरी बखा है, यही मेरी नजात है, यही काम करोगे तो मैं एग्जिस्ट करूँगा, मेरा नाम एग्जिस्ट होगा, वरना मेरा नाम दुनिया मिटा देगी। जिन जिन लोगों ने हुसैन का साथ दिया आज वो लोग कामयाब है दोस्तों, इसलिए कि मौला हुसैन किसी का रखते भी नहीं, किसी का नहीं रखते। आप कोशिश करो सिर्फ दिन भर में कम से कम 2-3 मजलिसें, अगर आप मजलिस एक कर रहे हैं, ऑफिस है, जॉब है, नौहा पढ़, 2-3 आंसू ज़रूर निकालो। अगर तुम मुहर्रम में नहीं रोगे और हुसैन के नाम पे नहीं रोगे तो फिर कब रोगे? आप ये मत समझो कि आप अकेले गिरिया कर रहे हैं, हुसैन के भी बच्चे थे लेकिन जालिमों ने रोने नहीं दिया, मौला हुसैन की भी बेटी थी, बाप का मातम करना चाहती थी लेकिन जालिमों ने इतना जुल्म किया कि सकीना बीबी को मालूम कब हुआ कि मैं यतीम हो गई? उस वक्त मालूम हुआ जब पहला तमाचा लगा। मैंने बड़ी आसानी से बोल दिया और आपने सुन लिया, पहला तमाचा जब बच्ची को लगा उस वक्त, दोस्तों तमाचा किसको बोलते, इस जालिम ने इतनी जोर से मुंह पे मारा था, इतनी जोर से मुंह पे मारा था कि हुसैन की यतीम जमीन पे गिर गई, फिर उठा के दूसरे रुखसार पे मारता तो उस वक्त एहसास हुआ कि मेरा बाबा मार डाला गया, तड़प के कहने लगी बाबा मैं तो यतीम हो गई बाबा। तो ये मत समझो कि तुम अकेले रो रहे, दोस्तों कायनात का जर्रा जर्रा मौला हुसैन के लिए रो रहा। हुसैन कर्बला पहुंच गए, 2 मुहर्रम को मेरा मौला हुसैन कर्बला पहुंचा, अल्लाह हमको भी कर्बला की ज़ियारत नसीब करे, 40 हुसैन इस साल इंशाल्लाह हम लोग कर्बला में करें इंशाल्लाह। दोस्तों और जब कर्बला पहुंचा यह काफिला, लुटा हुआ काफिला, मौला हुसैन का आबाद काफिला कहूँ, जब पहुंचे जिस घोड़े पे इमाम हुसैन थे वो घोड़ा कर्बला के मैदान में रुक गया, हुसैन तो जानते थे, 7 घोड़ों को 7 हॉर्सेस को उन्होंने चेंज किया हुज्जत को तमाम कर। उसके बाद मौला हुसैन झुक के नीचे से ज़मीन में से खाक उठाई, आंखों का सूंघा, सुन के नीचे डाल दिया। बनी असद की जो ट्राइब थी उनके लोग आ गए कि इमाम हुसैन आए, इमाम हुसैन आए, इमाम हुसैन, हर आदमी ज़ियारत को आ रहा था, काफिला पूरा खड़ा हुआ है। मौला हुसैन ने उन लोगों से पूछा कि ये बताओ इस ज़मीन का नाम क्या है? इमाम तो सब जानता है, किसी ने कहा मौला इसको मारिया कहते, किसी ने कहा मौला इसको शतुल फुरात कहते, किसी ने कहा मौला इसको नैनवा कहते। मौला बार बार पूछे जा रहे, ये बताओ इसका और कोई नाम है, इसका और कोई नाम है? एक बुजुर्ग इंसान ने आगे बढ़ के कहा मौला इसको करबला कहते हैं। बस ये कहना था, मेरे मौला हुसैन ने अब्बास से कहा भैया अब काफिला यहीं रुक जाएगा, काफिला रोको, खेमे लगाओ, मैं इस ज़मीन को ख़रीदना चाहता हूँ। جب لوگ آئے آ کے کہا مولا آپ رہیں جتنے دن چاہے رہیں لیکن مولا اس زمین کو خریدو مت. حسین نے پوچھا کیوں؟ تو کہا مولا ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ یہ زمین کسی کو راز نہیں آتی. مولا نے کہا اب یہ زمین ہم کو راز آئے، اب ہمیشہ قیامت تک ہم یہیں رہیں گے. بی بی زینب خیمے میں گئی، تھوڑی دیر گزری، تھوڑی دیر گزرنے کے بعد فضا سے کہا کہ فضا میرے ماجائے کو بلا کے لو. مولا حسین آئے تو کہا کہ بی بی نے کہا کہ بھیا یہ کیسی زمین ہے، جب سے میں آئی ہوں میرا دل بڑا گھبراتا ہے. اور بھیا خیمے کے پیچھے سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آتی، وہ بی بی ایسے تڑپ تڑپ کے رو رہی جس سے پورا گھر اجڑ گیا. حسین نے کہا آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا. بی بی نے حسین نے کہا بہن یہ کربلا ہے، اور بہن تم نے آواز کو نہیں پہچانا، یہ ہماری ماں فاطمہ ہے جو تڑپ تڑپ کے رو رہی کہ ہائے یہی زمین پہ میرا گھر اجڑ جائے گا. بس دوستو اس کے بعد وہ لمحہ آیا کہ مولا نے زمین کو خریدا، خرید کے جو ڈاکومنٹس بنے وہ پیپر جو بھی ڈاکومنٹس تھے اس ڈاکومنٹس کا امام نے پلٹ کے بنی اسد والوں کو پھر دے دیا. پھر دے کے کہا کہ میں تم کو ہبا کر رہا، گفٹ کر رہا. دیکھو یاد رکھو 10 محرم کو ہماری شہادت ہوگی، ہماری شہادت کے بعد جب میرے زائر آئیں تو ان کو بھوکا نہیں رکھنا. عزیزو آج جو کربلا میں کھانا کھلایا جاتا یہ حسین کی وصیت ہے کربلا والوں کو، کہا کہ میرا زائر بھوکا نہیں رہے، میرا زائر پیاسا نہیں رہے. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں مولا آپ تو بھوکے شہید ہو گئے لیکن آپ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ کا زائر بھوکا اور پیاسا رہے. دوستو اس کے بعد امام کی غربت دیکھو، مولا حسین کی غربت کمال پہ گئی. امام نے بنی اسد کے مردوں کو بلا کے کہا سنو ہم 10 محرم کو شہید ہو جائیں گے اور یہ جو ظالمین ہیں یہ اپنی لاشوں کو دفن کریں گے، ہماری لاشوں کو چھوڑ دیں گے، تم لوگ آنا اور ہماری لاشوں کو دفن کرنا. اس کے بعد امام نے عورتوں کو بلایا، عورتوں کو بلا کے کہا کہ اگر تمہارے مرد حکومت کے خوف سے نہ آئیں تو پانی کے بہانے آنا اور ہماری لاشوں پہ مٹھی ڈال دینا. عزیزو اس کے بعد حسین کی غربت معراج پہ چلی گئی، عورتوں کو مردوں کو بولنے کے بعد پھر امام نے کیا کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، بلا کے کہا بچوں سنو اگر تمہارے ماں باپ ہم کو دفن نہ کرے تو کھیلتے ہوئے آنا، ایک ایک مٹی کاغ ہمارے جسموں پہ ڈالنا. آج بھی 12 محرم کو بنی اسد کا قافلہ ایسی آتا ہے، جب اس دن آیا 12 محرم کو تو ان کو سمجھ میں نہیں آیا ہر طرف لاشیں ہیں لیکن کسی پہ سر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک عجیب مسافر کو دیکھا کہ جو اونٹ پہ آیا جو توق و زنجیر میں اسیر تھا، اس نے کہا ٹھہر جاؤ میں بتاتا ہوں کس کا لاشا ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ گیا ایک جوان کی میت تھی جس کا سینہ زخمی تھا، اس نے اپنے سینے پہ مار کے کہا یہ میرا بھائی علی اکبر ہے، پھر ایک پامال لاشے کو اٹھا کے کہا یہ قاسم ہے، پھر آنو محمد کی لاشے اٹھائی، پھر علی اصغر کا لاش کو اٹھا کے دفن کیا، پھر امام حسین کے پاس گیا اور تڑپ تڑپ کے رونے لگا. تو اس وقت بنی اسد والوں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ تو کہا یہ میرا بابا حسین ہے. کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں ان کا بیٹا سید سجاد ہوں. اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے کے بعد دوستو جب یہ بنی اسد والے جانے لگے، میں نے مجلس ختم کر دی، جانے لگے تو کہا نہیں ٹھہرو ابھی ایک لاش اور باقی ہے اس کو بھی دفن کرنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم کو نہر پہ لے کر گئے، نہر پہ گئے تو دیکھا کہ ایک شیر لیٹا ہوا ہے لیکن دونوں ہاتھ اس شیر کے نہیں ہیں، اس کو بھی قبر میں اتارا. اور بنی اسد والوں سے کہا تم لوگ اوپر ٹھہرو، میرا امام نیچے اترا، اپنے رخسارے کو اپنے چچا کے سینے پہ رکھا، رکھ کے کہا چچا آپ یہاں آرام کر رہے، آپ کی بہنیں کوفے میں ہیں، ارے زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے، چچا آپ زندہ رہتے تو آج آپ کی بہنوں کا یہ حال نہیں ہوتا. اللہ سیدی پروردگار میرے مولا حسین کے مصائب کا واسطہ، مولا عباس کا واسطہ، ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما. سمیل کے آمین بولو. پروردگار ہماری یہ مجلس میری مظلوم بیوی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. سمیل کے آمین بولو. پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے. ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دو. پروردگار ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر دو. بے حق بیمار کربلا، بیمار مدینہ، جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما. پروردگار دنیا بھر میں تو عزاداری کی حفاظت فرما. پروردگار جنت البخی، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے. فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ دے، ان کے صدقے میں سارے مولا کے چاہنے والوں کو سلامت رکھ دے. اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کر سکیں. پروردگار ہم کو موقع دے، توفیق دے کہ ہم اسلام کی مدد کریں، سیرت مولا حسین پہ چلنے کی توفیق. اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو اور ہم سب کو حج و عمرہ و زیارات نصیب ہو اور زیارات کے راستوں کو کھول دے. میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما. ایک سورہ فاتحہ قیصر بھائی کے لیے پڑھ دیں، اپنے اپنے سارے مرحومین کے لیے پڑھ دیں، آغائے خمینی صاحب کے لیے پڑھیں اور فرمان علی صاحب کے لیے پڑھ دیں جنہوں نے قرآن کی تفصیل لکھی، اور جتنے علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مرجع عالم ہیں ان سب کے لیے، بامبے کے سارے مرحومین جس کی بھی آج پہلی رات ہے اس کے لیے، اور مکھی فیملی کے سارے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جب دفن کرنے آئے تنے پاش پاش کو، عابد پکار دیکھ کے غازی کی لاش کو، ارے چچا میں آپ کی تربت بنانے آیا ہوں، چچا میں آپ کی تربت بنانے آیا ہوں، چچا میں آپ کی تربت بنانے چچا میں آپ کی تربت بنانے آیا ہوں. سکینہ بی بی ہے پیاسی بتانے آیا ہوں، چچا میں آپ کی تربت بنانے آیا ہوں، چچا میں تربت بنانے آیا ہوں. بتاؤں کیسے چچا کا گزر گئی ہم پر، ہر ایک شہر میں مارے گئے ہمیں پتھر، کمائے پپیا میرے ساتھ علی کے پسر، سارے ظلم کے قصے سنانے آیا ہوں، چچا میں آپ کی تربت بنانے آیا ہوں، چچا میں آپ کی تربت بنانے آیا ہوں. حرم کو چھوڑ کے کوفے سے آ رہا چچا، بتا گئے ہیں تمہاری وصیت بابا، وہی ہو قلب چھدا تھا جہاں پہ مشرقی زا کیا تھا شہر. बचा मैं आपकी तुर्बत बनाने आया हूँ, बचा मैं आपकी तुर्बत बनाने आया हूँ। तीन रोज से लाशे पे धूप का साया, दे नहीं सकता। अरे तुम्हारी लाश के टुकड़े उठा ले आया हूँ, चचा मैं आपकी तुर्बत बनाने आया हूँ, चचा मैं आपकी तुर्बत बनाने